41 वादरायण व्यास वैशाली के ठीक ईशान कोण पर लगभग वैशाली और राजगृह के अर्धमार्ग में पाटलिपुत्र से थोड़ा पूर्व की ओर हटकर गंगा के उपकूल पर एक बहुत प्राचीन मठ था। वो मठ वादरायण मठ के नाम से प्रसिद्ध था। उस मठ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। देश देशांतर के सम्राटों और सामंतों के समय समय पर अर्पित ग्राम सुवर्ण और गौ तथा भूसंपत्ति से मठ बहुत संपन्न था। राजा और सभी जनों का वहां नित्य आवागमन बना रहता था। मठ की ख्याति और उसकी प्रतिष्ठा जो दिग्दिगंत में फैल रही थी, उसका कारण भगवान वादरायण व्यास थे, जो इस मठ के गुरुपद थे। उनके चरणों में बैठकर देश देशांतरों के बटुक विविध विद्याओं का अध्ययन करते और ज्ञान संपदा से परिपूर्ण होकर अपने देशों को लौटते थे। भगवान वादरायण कब से मठ के अधीश्वर हैं ये कोई नहीं जानता। ना कोई यही कह सकता है कि उनकी आयु कितनी है। वे आज जैसे हैं वैसा ही लोग न जाने कब से उन्हें देखते आ रहे हैं। भगवान वादरायण धवल कौशेय धारण करते हैं। उनके सिर और दाढ़ी के बाल अतिशुभ्र चांदी के समान हैं, जो उनके गौरवर्ण तेजस्वी मुखमंडल पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनकी संपूर्ण दंत पंक्ति बहुमूल्य मुक्ता पंक्ति के समान शोभित है। उनका अनवरत मृदुमंद हास्य शरद कौमुदी से भी शीतल और तृप्तिकारक है। वे बहुत कम शयन करते हैं, अपराह्न में केवल एक बार हविष्यान आहार करते हैं। आज तक किसी ने उन्हें क्रुद्ध होते नहीं देखा। उनका पांडित्य अगाध है और उनकी विचारधारा असंदिग्ध। उनकी दार्शनिक सत्ता लोकोत्तर है। वे महासिद्ध त्रिकालदर्शी महापुरुष विख्यात हैं। उनका कद लंबा, देह दुर्बल किंतु बलिष्ठ है। नासिका उन्नत, ललाट प्रशस्त, नेत्र मांसल, स्निग्धा और महातेजवान है। उनमें भूत दया, दिव्य ज्ञान एवं समदर्शीपन की स्निग्धा धारा निरंतर बहती रहती है। कोई उन्हें भगवान वादरायण कहते हैं, कोई केवल भगवान कहते हैं, किंतु बहुत जन उन्हें कोई संबोधन ही नहीं करते। वे उन्हें देखकर ससंभ्रम पीछे हट जाते हैं अथवा पृथ्वी में गिरकर प्रणिपात करते हैं। वे दोपहर रात रहते शैया त्याग देते हैं और गर्भगृह में जाकर समाधिस्थ विराजते हैं। फिर उषा का उदय होने पर मठ के अंतराल में आकर प्रहर दिन चढ़े तक बटुतों को ज्ञान दान देते हैं। इसके बाद व्याघ्र चर्म पर बैठकर सर्वसाधारण को दर्शन देते तथा उनसे वार्तालाप करते हैं। मध्यान्ह होने पर वे आवश्यक मठ प्रबंध संबंधी व्यवस्थाओं की आज्ञाएं प्रचारित कराते और फिर अंतरायण में जा विराजते हैं। उस काल में शास्त्र लेखन अथवा अदृष्ट गणना करते हैं अथवा किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार गवेषणा करते हैं। भगवान वादरायण के इस नित्य विधान में कभी किसी ने व्यतिक्रम होते नहीं देखा। न कभी वे रोगी, पीड़ित, थकित या क्लांत देखे गए। ऐसे ये भगवान वादरायण व्यास थे, जिनकी ख्याति उन दिनों दिग्दिगंत में फैली थी। भादों का संध्याकाल था। आकाश पर काली घटाएं छा रही थीं। गंगा का विस्तार सागर के जैसा हो रहा था। उस पार दूर तक जल ही जल दीख पड़ता था। लता गुल्म सब जलमग्न हो गए। वृक्ष आधे जल में डूबे दूर से लता गुल्म जैसे प्रतीत होते थे। अभी दिन का थोड़ा प्रकाश शेष था। बटुकगण सांध्य अग्निहोत्र कर चुके थे। भगवान वादरायण मठ के पश्चिम ओर के प्रांत भाग में एक ऊंचे शिलाखंड पर खड़े भागीरथी गंगा का ये विस्तार देख रहे थे। उन्हीं के निकट एक ब्रह्मचारी युवा विनम्र भाव में खड़ा था। ब्रह्मचारी की आयु 30-32 वर्ष थी। उसकी छोटी सी काली दाढ़ी ने उसके तेजस्वी मुख की दीप्ति को और भी बढ़ा दिया था। उसका बलिष्ठ अंग कह रहा था कि वो ब्रह्मचारी असाधारण शक्ति से संपन्न है। भगवान वादरायण बोले, सौम्य मधु, गंगा का विस्तार तो बढ़ता ही जाता है। उस ओर के जो ग्राम डूब गए थे वहां उपयुक्त सहायता भेज दी गई है ना? ब्रह्मचारी ने विनयवनत होकर कहा, भगवान के आदेश के अनुसार 200 नावें कल ही भेज दी गई थी। वे अपना कार्य कर रही हैं। औषध और अन्न वितरण भी हो रहा है और पीड़ित क्षेत्र के स्त्री बच्चे एवं वृद्धों को सर्वप्रथम उठा उठाकर रक्षा क्षेत्रों में पहुंचाया भी जा रहा है। किंतु क्या ये पर्याप्त है मधु? पर्याप्त तो नहीं भगवन, परंतु अभी और अधिक व्यवस्था नहीं हो सकी। हमारी बहुत सी नौकाएं बह भी तो गई हैं। फिर माझियों की भी कठिनाई है। प्रातःकाल और 100 नावें जा रही हैं। ये अच्छा है, परंतु चिकित्सा और खाद्य सामग्री क्या प्रचुर मात्रा में है? जी हाँ भगवन, परंतु चिकित्सकों की कमी है। फिर भी रक्षण क्षेत्र में सर्वोत्तम चिकित्सा की व्यवस्था है। व्यवस्था तो विपद क्षेत्रों की भी होनी चाहिए मधु, ये सभी ग्रामवासी अति निरीह हैं। और इस बार तो उनका घर बार धन धान सभी बह गया। क्यों ना, भगवान वादरायण की वाणी करुणा से आर्द्र हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सत्य है, परंतु भगवान वैशाली और राजगृह से चिकित्सक बुलाए गए हैं, उनके आने पर सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और बाढ़ का जल घटते ही मठ की ओर से उनके घर द्वार निर्माण करने एवं बीज देने की यथावत व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, परंतु क्या गणपति को तुमने सहायता के लिए नहीं लिखा? ये ग्राम तो वज्जीगण ही के हैं। जी हाँ भगवान, लिख दिया है, आशा है उपयुक्त सहायता शीघ्र मिल जाएगी। भगवान वादरायण हर हर करती गंगा की अपरिसीम धारा को देखते रहे। फिर कुछ देर बाद स्निग्ध स्वर में कहा, ठीक है मधु, सांध्यकृत का समय हो गया, चलो अब भीतर चले। परंतु मधु, आज एक संभ्रांत अतिथि आने वाले हैं। वे गंगा की राह आएंगे या राजमार्ग से ये नहीं कहा जा सकता, दोनों ही मार्ग अगम्य हैं, परंतु वे आएंगे अवश्य। तुम उनकी प्रतीक्षा करना और उनके विश्राम आदि की यत्न से सम्यक व्यवस्था कर देना तथा ऊषा काल में उन्हें मेरे पास गर्भगृह में ले आना। बटुक ने मस्तक नवाकर आदेश ग्रहण किया। फिर आगे आगे भगवान वादरायण व्यास और उनके पीछे वो ब्रह्मचारी दोनों मठ की ओर चल दिए। 42 सम्मान्य अतिथि। सांधकृत्य समाप्त हुआ, भगवान वादरायण गर्भगृह में चले गए। ब्रह्मचारी उन्हें गर्भगृह के द्वार तक पहुंचाकर पाद वंदन करके प्रांगण में लौट आया। अन्य वटुक भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। पार्षदगण इधर उधर दौड़ धूप करके अपना अपना काम करने लगे। अनावश्यक दीप बुझा दिए गए। अपना कार्य समाप्त करके पार्षदगण भी विश्राम के लिए चले गए। केवल वही तरुण ब्रह्मचारी प्रांगण में रह गया। पार्षदों को उसने कुछ आवश्यक आदेश दिए। गुरुपद के आदेशों की पूर्ति भी उसने यथासाध्य की। फिर वो एक मरमर स्तंभ पर पीठ का सहारा ले एक व्याघ्र चर्म पर चुपचाप बैठकर कुछ चिंतन करने लगा। आकाश में बादल घिर रहे थे, उनके बीच कभी कभी चतुर्थी का क्षीण काय चंद्र दीख पड़ता था, जिससे रात्रि का अंधकार थोड़ा सा प्रतिभासित हो उठता था। एक आध तारे भी कभी कभी दृष्टिगोचर हो जाते थे। ब्रह्मचारी कभी आंखें बंद किए और कभी खोलकर देख लेता था। उसका ध्यान गुरुपद की आज्ञा पर था। कौन वो सम्मान्य अतिथि आज रात को आने वाले हैं, जिनके लिए गुरुपद ने इतने यत्न से आदेश दिया है? उन्हीं की अभ्यर्थना के लिए उसने हठपूर्वक रात्रि जागरण करने का निश्चय कर लिया। दो दंड रात्रि व्यतीत होने पर उस नीरव रात्रि में उसे प्रतीत हुआ जैसे सुदूर पर्वत उपत्यका से कुछ अस्फुट शब्द रुक रुक कर आ रहा है। थोड़ी देर में वो सावधान होकर सुनने लगा। वो समझ गया कि अश्वपद की ध्वनि है। अश्व एक नहीं अधिक है। कुछ ही देर में मठ के पीछे के प्रांत द्वार पर प्राचीर के निकट कुछ आहट प्रतीत हुई। वो समझ गया कुछ अश्वारोही उधर आए हैं। वो झटपट अपने उत्तरवासक को कमर में लपेटकर मठ के प्रांत द्वार पर गया। अंधेरे में पहले कुछ नहीं दिखा, फिर देखा कोई 10 हाथ के अंतर पर एक मनुष्य की छाया है, पार्श्व में 2 अश्व हैं। उसने दोनों हाथ ऊँचे करके कहा, भंते अतिथि, आपका मठ में स्वागत है। मैं भगवान वादरायण के आदेश से आपके स्वागतार्थ प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मचारी के वचन सुनकर छाया मूर्ति अंधकार से आगे बढ़ी। मंदिर के क्षीण आलोक में ब्रह्मचारी ने देखा, वो एक वृद्ध भट है। उसके शस्त्र तारों के क्षीण प्रकाश में चमक रहे थे। वृद्ध ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मचारी को अभिवादन करके कहा, हमें क्षमा करें भंते, मार्ग में बहुत वर्षा होने से हमें अति विलंब हो गया और असमय में आपको कष्ट देना पड़ा। कोई हानि नहीं, भगवान ने मुझे प्रथम ही आदेश दे दिया था। परंतु इतना कहकर भी ब्रह्मचारी कुछ असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये साधारण वृद्ध भट ही क्या वो सम्मान्य व्यक्ति है जिसने उसे भंते कहकर और अभिवादन करके अपनी लघुता प्रकट की है? वो ध्यान से आगंतुक को देखने लगा। आगंतुक ने कहा, भगवान वादरायण त्रिकालदर्शी है। और तब पीछे खड़ी दूसरी छाया मूर्ति की ओर देखा। ब्रह्मचारी ने उसे अभी नहीं देखा था। वो छाया मूर्ति भी आगे बढ़ी। ब्रह्मचारी उसे उस धूमिल प्रकाश में देखकर स्तंभित हो गया। वो स्वप्न में भी नहीं सोच सका था कि जिस सम्मान्य अतिथि की वो प्रतीक्षा कर रहा था वो कोई महिला है। उसने एक ही दृष्टि से देखा, महिला असाधारण सुंदरी और गौरवशालिनी है। उसने आगे बढ़कर युवा ब्रह्मचारी से मधुर शब्दों में कहा, भंते ब्रह्मचारिन, हम लोग बहुत थक गए हैं, वस्त्र भी सब भीग गए हैं, अश्वों को भी दाना पानी नहीं मिला, कष्ट करके अभी हमारे विश्राम की व्यवस्था कर दीजिए। प्रभात में हम भगवान वादरायण की पाद वंदना करेंगे, असुविधा के लिए क्षमा कीजिए। तरुण ब्रह्मचारी को जब गुरुपद ने आग्रहपूर्वक एक संभ्रांत अतिथि के आने का संकेत किया है तब वो अवश्य ही कोई महामहिम अतिथि होगा, ऐसा समझकर युवक विनय से बोला, देवी इधर से पधारे। आगे आगे ब्रह्मचारी और उसके पीछे अतिथि पेचीदे मार्गों से घूमते हुए मठ के भीतर प्रांगण में आए। वृद्ध भट्ट ने संकोच से कहा, किंतु अश्व, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता न करें। फिर कोई नहीं बोला। ब्रह्मचारी ने एक सुसज्जित कक्ष में अतिथियों को ला खड़ा किया। कक्ष में विश्राम और सुख के सब राजसी साधनों को देखकर अतिथि स्तंभित रह गए। महिला ने मृदु मंद हास्य से कहा, भगवान वादरायण का ऐसा वैभव है? ब्रह्मचारी ने संकुचित होकर कहा, समुचित व्यवस्था नहीं कर सका, गुरुपद ने संध्या समय ही आदेश दिया था, आपको कोई आवश्यकता हो तो कहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें केवल विश्राम ही की आवश्यकता है। तो देवी सुख से विश्राम करें, थोड़ा गर्म दूध और हविष्यान में अभी भिजवाता हूं। साधु ब्रह्मचारिन, किंतु भगवान वादरायण को हमारे आगमन की सूचना होनी आवश्यक है। उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान का आदेश है, कल उषा काल में गुरुपद के आपको दर्शन होंगे, मैं स्वयं आपको गर्भगृह में ले जाऊंगा। जैसी भगवान वादरायण की इच्छा, तो अब हम विश्राम करेंगे। ब्रह्मचारी विनय से मस्तक झुकाकर मठ के बाहरी प्रांगण की ओर धीरे धीरे अग्रसर हुआ। मठ के बाहरी प्रांगण में सन्नाटा था। वो प्रांगण को पार करता हुआ विश्राम के लिए अपनी कुटिया की ओर मठ के उत्तर प्रांत से जा रहा था। मठ के उत्तर द्वार की पीठिका के निकट एक एकांत स्थान पर उसकी कुटिया थी। वहां जाने के लिए उसे विस्तृत संपूर्ण प्रांगण, अंतर्भूमि और बाहरी विस्तृत भूभाग पार करना पड़ा। अभी केवल दो स्थूल दीप बाहरी दीपाधारों में जल रहे थे। उन्हीं के प्रकाश में उसने देखा, उत्तर द्वार के सम्मुख बड़ी पौर के निकट एक मनुष्य मूर्ति दीप स्तंभ के नीचे खड़ी है। प्रथम उसे भ्रम हुआ, फिर निश्चय होने पर उसने उसके तनिक निकट जाकर पुकारा, कौन है? उत्तर संक्षिप्त मिला, अतिथि। ब्रह्मचारी ने बिल्कुल निकट जाकर देखा, अतिथि असाधारण है। वो एक दीर्घकाय बलिष्ठ एवं गौरवर्ण पुरुष है। उसकी मुखाकृति अति गंभीर, आकर्षक और प्रभावशाली है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से शक्ति का स्रोत बह रहा है। उसके वस्त्र बहुमूल्य हैं। उष्णीश की मणि उस अंधकार में भी शुक्र नक्षत्र की भांति चमक रही है। कमर में एक विशाल खड्ग है और हाथ में एक भारी बर्छा। खड्ग पर मणिमाणिक जड़े हैं जो उस अंधकार में भी चमक रहे हैं। वो थकित भाव से अपने बर्छे का सहारा लिए खड़ा है। देखकर ब्रह्मचारी दो कदम पीछे हट गया, फिर सासंभ्रम आगे बढ़कर उसने कहा, भंते मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे रात्रि व्यतीत करने को थोड़ा स्थान चाहिए और यदि थोड़ा गर्म दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी कुछ असमंजस में पड़कर बोला, किंतु इस समय उपयुक्त नहीं, नहीं आयुष्मान शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, भगवान वादरायण के पुनीत स्थान में सब उपयुक्त है। तब आप आइए मेरी कुटी में। और बातचीत नहीं हुई। कुटी में आकर ब्रह्मचारी ने दीप जलाया। इस बार उसने फिर अतिथि की ओर देखा। अपनी क्षुद्र एवं दरिद्र कुटिया में इस अतिथि के लाने के कारण वो संकुचित हो गया। कुटिया छोटी ही थी। उसके बीच में एक काष्ठ फलक पर कृष्णाजिन बिछा था, एक भद्रपीठ पर जल का पात्र, थोड़ी पुस्तकें और एक दो आवश्यक वस्तुएं ही वहां थीं। हाँ, प्रकुंडे पर दो उत्तम धनुष, एक विशाल बर्छा तथा कई उत्कृष्ट खड्ग लटक रहे थे। अतिथि ने क्षणभर में ही दृष्टि घुमाकर सारी कुटिया और वहां की सामग्री को देख डाला, फिर हंसकर कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी ही कुटी है आयुष्मान? जी हाँ भंते। और ये पुस्तकें कृष्णाजिन? सब मेरे उपयोग की हैं। बहुत ठीक, परंतु ये शस्त्रास्त्र? उन्होंने हठात एक धनुष को दीवार से खींचकर क्षणभर ही में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। तरुण ने अतिथि के असाधारण सामर्थ्य और हस्तलाघव से चमत्कृत होकर कहा, कभी कभी गुरुपद मुझे अभ्यास कराते हैं। साधु आयुष्मान, इसकी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने रहस्यपूर्ण हास्य होठों पर लाकर धनुष को दीवार पर टांग दिया। तो मैं इस कृष्णा जिन पर विश्राम करूंगा, किंतु तुम? मेरे लिए बहुत व्यवस्था है भंते। इस पात्र में दूध है और सूखा हुआ कौशेय प्रावार और कौजव खूंटी पर है। ठीक है आयुष्मान, किंतु तुम्हारा नाम क्या है?
माधव भंते, किंतु गुरुपद मुझे मधु कहते हैं।
तो मैं भी यही कहूंगा, मधु आयुष्मान। अब मैं विश्राम करूंगा। क्या भगवत पाद में निवेदन करना होगा?
नहीं नहीं, प्रभात में देखा जाएगा।
बटुक क्षणभर कुछ सोचकर चला गया। वो सोच रहा था, ये अधिकारपूर्ण स्वर से बात करने वाला तेजस्वी अतिथि कौन है, और वो असाधारण महिला? आज दो दो महार्ग अतिथि मठ में आए हैं, परंतु गुरुपद ने तो एक ही का संकेत किया था। वो संकेत किसके प्रति था? बहुत देर तक बटुक विचार करता रहा, फिर वो अलिंद के एक स्तंभ का ढास न लगाकर सो गया। 43. गर्भगृह में। गर्भगृह में माधव ब्रह्मचारी के साथ हठात अम्बपाली को आते देख भगवान वादरायण व्यास ने आश्चर्य मुद्रा से कहा, अरे देवी अम्बपाली! माधव ब्रह्मचारी ने ज्यों ही वो अतिश्रुत नाम सुना, वो अचकचाकर अम्बपाली की ओर ताकता रह गया। अम्बपाली ने पृथ्वी पर गिरकर प्रणिपात किया। भगवान वादरायण ने स्वस्ति कहकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो। जनपद कल्याणी अम्बपाली, कहो तुम्हारा ये अकस्मात आगमन क्यों? अविनय, क्षमा हो, मैं प्रथम से बिना ही आदेश पाए चली आई, किंतु सर्वदर्शी भगवत पाद ने इस अकिंचन की विश्रामातिथ्य की जो असाधारण व्यवस्था की, उससे मैं अति कृतार्थ हुई। किंतु भगवान वादरायण ने तरुण बटुक की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। ब्रह्मचारी ने अटकते हुए कहा, भगवत पाद का आदेश यथाशक्ति पालन किया गया है, क्या रात्रि में और कोई अतिथि नहीं आए? माधव ने सावधान मुद्रा से कहा, एक राजवर्गी सामंत भी हैं। इसी समय एक छाया ने गर्भगृह में प्रवेश किया। उसे देखकर भगवान वादरायण कुछ असंयत हुए। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, मगध सम्राट की जय हो। तब तक मगध सम्राट का मस्तक भगवान वादरायण के चरणों में झुक गया। सम्राट का नाम सुनते ही माधव स्तंभित हो गया। वो अपनी अभिनय पर विचार करने लगा। भगवत पाद के संकेत से उसने आसन की व्यवस्था की। स्वस्थ होकर बैठने के बाद सम्राट ने हंसकर कहा, भगवत पाद का आशीर्वाद विलंब से मिला। प्रसेनजीत ने मुझे करारी हार दी है। अभियान के समय में भगवत पाद के दर्शन नहीं कर सका। वार्षवि विदुडभ ने मुझे डुबोया। उसी ने लिखा था कि श्रावस्ती पर अभियान का यही समय है। बूढ़े कामुक महाराज प्रसेनजीत अब कुछ न कर सकेंगे। वे कौशाम्बीपति उदयन से उलझे हुए हैं और सेनापति कारायण से मिलकर मैं संपूर्ण सेना में विद्रोह कर दूंगा। और सम्राट उसी के बल पर श्रावस्ती पर चढ़ दौड़े। भगवान वादरायण ने मंद स्मित करके कहा। सम्राट ने लज्जा से सिर झुका लिया। भगवान वादरायण फिर बोले, बंधुल मल्ल और उसके बारह परिजनों के विक्रम का विचार नहीं किया? आर्यवर्षकार ने आपत्ति की थी, वे पूरी शक्ति चंपा विजय में लगाकर तब इधर ध्यान देने के पक्ष में थे। कुछ देर चुप रहकर भगवान वादरायण ने कहा, आप आए कब?
मध्यरात्रि के बाद। मैं अश्व पर निकला था, पर राह में वो मर गया, तब नौका पर चला। एक स्थल पर नौका उलट गई, तब मैं तैरकर मध्यरात्रि में यहां पहुंचा। आयुष्मान मधु का मैंने रात आतिथ्य ग्रहण किया और उसी की कुटिया में रात व्यतीत की।
भगवान वादरायण ने प्रश्न सूचक दृष्टि से माधव की ओर देखा। मधु ने लज्जित होकर कहा, अभिनय, क्षमा हो, मैं सम्राट को पहचान न सका। गुरुपद का आदेश कदाचित। वो अम्बपाली की ओर देखकर चुप हो गया। अम्बपाली की ओर अभी तक सम्राट की दृष्टि नहीं गई थी, अब उन्होंने भी इधर देखा। घृतदीप के मंद पीत प्रकाश में अम्बपाली उन्हें एक सजीव चंपक पुष्प गुच्छ सी दीख पड़ी। इसी समय भगवान वादरायण खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने चकित होकर उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, खूब हुआ, सम्राट के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका देवी अम्बपाली ने उपयोग किया, फलतः सम्राट को माधव की कुटिया के काष्ठ फलक पर रात्रि व्यतीत करनी पड़ी। अम्बपाली ने आगे बढ़ और करबद्ध हो सम्राट का अभिवादन किया, फिर मधुर कंठ से कहा, सम्राट की जय हो, मुझसे अनजाने ही ये अपराध हो गया है। सम्राट ने हंसकर कहा, आप्यायित हुआ ये जानकर
कि जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली ने मेरे लिए नियोजित कक्ष में शयन सुख उठाया और हर्षित हुआ, अनुग्रहित हुई। भला एक अनुग्रह तो स्वीकार किया देवी अम्बपाली ने, मुझे प्रसेनजीत से पराजित होने का क्षोभ नहीं है। सम्राट ने हंसकर दोनों हाथ फैलाए। भगवान वादरायण ने हंसकर कहा, लाभ है लाभ है सुश्री अम्बपाली, तो मैं आज रात्रि में तुमसे वार्तालाप करूंगा। जैसी आज्ञा भगवन। उसने प्रथम भगवान वादरायण को और फिर मगध सम्राट को सिर झुकाकर अभिवादन किया और कक्ष से चली गई। एकांत होने पर भगवान ने कहा, तो आपकी महत्वाकांक्षा ने वर्षकार की बात पर विचार नहीं करने दिया। इसी से तो भगवान करारी हार खाई, परंतु वैशाली में ऐसा अवसर न आने पाएगा क्यों? भगवत पाद जब हृदगत भाव से अवगत हैं तो मैं आशीर्वाद की आशा करता हूं। सम्राट को उसकी क्या आवश्यकता है? विजय के लिए उनकी सेना और कूटनीति यथेष्ट है। किंतु ये तो भगवत पाद का कोप वाक्य है, भगवान प्रसन्न हो। भगवान वादरायण ने मंद हास करके कहा, नहीं नहीं सम्राट, कोप नहीं, परंतु सम्राटों और विरक्तों का दृष्टिकोण सदा ही पृथक रहता है। परंतु भगवान, जहां जनपद हित और व्यवस्था का प्रश्न है, वहां सम्राट और विरक्त एक ही मत पर रहेंगे। फिर भी सम्राट विरक्त सदैव कर्तव्य पर विचार करेगा और सम्राट अधिकारों पर। यही अधिकार युद्ध, रक्तपात और अशांति की जड़ है, यद्यपि वे सदैव जनपद हित और व्यवस्था के लिए किए जाते हैं। अविनय क्षमा हो भगवान, इस युद्ध, रक्तपात और अशांति में भी एक लोकोत्तर कल्याण भावना है। भगवान भली भांति जानते हैं कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे स्वार्थों के कारण परस्पर लड़ते रहते हैं। साम्राज्य ही उन्हें शांत और समृद्ध बनाता है। साम्राज्य में राष्ट्र का बल है, साम्राज्य जनपद की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। भगवत पाद हंस दिए। उन्होंने कहा, इसी से सम्राट छोटे से वैशाली के गणतंत्र को मगध साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। सम्राट ने कुछ लज्जित होकर कहा, भगवन, स्वाधीनता सर्वत्र ही अच्छी वस्तु नहीं है, ये दासता की ध्वनि है और इसके मूल में आपाद, अशांति, अव्यवस्था और उत्क्रांति है। भगवान ने किंचित हास्य कर कहा, तो कौशाम्बीपति उदयन ने श्रावस्ती अभियान में आपको सहायता नहीं दी? यही तो हुआ भगवान, विदुढ़ ने यही तो कहा था कि कौशाम्बीपति ससैन्य सीमा प्रांत पर सन्नद्ध है, ज्यों ही मगध सैन्य का आक्रमण होगा वे उस ओर से घुस पड़ेंगे। ये अभी संधि कदाचित बंधुल मल्ल ने पूरी नहीं होने दी? नहीं भगवन, आर्य योगंध रायण ने उदयन को आक्रमण न करके हमारे युद्ध का परिणाम देखने की सम्मति दी। योगंध रायण मृत मांस खाना चाहता था। भगवान वादरायण जोर से हंस दिए। सम्राट भी हंसे। मैं भगवतपाद के हंस का कारण समझ गया, कदाचित कौशाम्बीपति योगंध रायण की सम्मति अमान्य करते, पर गांधार नंदिनी कलिंग सेना का अनुरोध न टाल सके। देवी कलिंग सेना ही के लिए उदयन ने कौशल पर आक्रमण किया था, परंतु कलिंग सेना ने ही जब ये संदेश भेजा कि मैंने कौशलेश को आत्मसमर्पण कर दिया है, कौशाम्बीपति का मेरे लिए अभियान धर्मसम्मत नहीं है, तब कौशाम्बीपति निरुपाय हो युद्ध विरत हो गए। भगवान वादरायण ने कहा, तो सम्राट अब नित्यकर्म से निवृत्त हो विश्राम करें, अभी और बातें फिर होंगी। वे उठ खड़े हुए, सम्राट भी उठे। भगवान ने कहा, मधु सम्राट के लिए। सम्राट ने बाधा देकर कहा, नहीं नहीं भगवान, मधु की कुटिया मुझे बहुत प्रिय है और मधु उससे भी अधिक। कदाचित इसलिए कि वो साधु कम और सैनिक अधिक है? भगवान, मुझे मधु जैसे सैनिकों की बड़ी आवश्यकता है। तो सम्राट जैसे प्रसन्न हो। तीनों गर्भगृह से बाहर निकले। 44 भारी सौदा। अम्बपाली ने अपने कक्ष में सम्राट को आमंत्रित किया। सम्राट के आने पर उनका अर्घ्यपाद्य से सत्कार करके अम्बपाली ने उन्हें उच्च पीठ पर बिठाकर कहा, तो क्या मैं आशा करूं कि सम्राट ने मेरा अपराध क्षमा कर दिया? कौन सा अपराध? पहले अभियोग उपस्थित होना चाहिए। अम्बपाली ने मंद स्मित करके कहा, गुरुतर अपराध सम्राट, मैंने सम्राट के लिए व्यवस्थित कक्ष और अभ्यर्थना का अपहरण जो किया। ये अपराध तो बहुत प्रिय है और सुखद है देवी अम्बपाली, मैं चाहता हूं मेरे जीवन के पल पल में देवी ये अपराध करें। देव क्या ऐसी ही भावुकता से न्याय विचार करते हैं? यदि अभियुक्त कोमल कवि कल्पना की सजीव प्रतिमूर्ति हो, तो फिर सम्राट क्या और अधिक क्या, उसे भावुक बनना ही पड़ेगा। देव, ये तो मगध सम्राट की वाणी नहीं है।
सत्य है देवी अम्बपाली, ये एक आतुर प्रणयी का आत्मनिवेदन है।
सम्राट की जय हो, देव राजमहिषी के प्रति अन्याय कर रहे हैं।
देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, वे सम्राट के साथ अत्याचार कर रही हैं।
किस प्रकार देव?
वहां खड़ी रहकर।
यहां पास आकर बैठो, एक तथ्य सुनो प्रिय।
अम्बपाली ने एक पीठ पर बैठते हुए कहा,
देव की क्या आज्ञा होती है?
सुनो प्रिय, सम्राट पर करुणा करो, इसे प्रसेनजीत से ही पराजित नहीं होना पड़ा।
शांतम पापम, क्या देव कोई दूसरी दुर्भाग्य कथा सुनाना चाहते हैं?
कथा नहीं, तथ्य प्रिय। इस भाग्यहीन बिंबिसार को प्रणय क्षेत्र में तो जीवन के प्रारंभ में ही हार खानी पड़ी है।
देव ये क्या कह रहे हैं?
वही जो केवल देवी अम्बपाली से ही कह सकता था। प्यार की वो निधि तो प्रिय अम्बपाली अभी तक वहीं उस पुराण हृदय में धरी है, किसी की धरोहर की भांति, और मैं आजीवन उसके धनी को ही खोजता रहा हूं।
हाय हाय, और देव उसे अभी तक पाने में समर्थ नहीं हुए?
आज हुआ प्रिय, संभाल लो वो सब अपनी पूंजी और इस शुष्क निसंग बिंबसार के जलते हुए सूने जीवन में प्यार की एक बूंद टपका दो।
देवी अम्बपाली,
प्रिय मैं आज से नहीं कब से तुम्हारी बाट जो रहा हूं। तुमने सदैव मेरी भेंट अस्वीकार करके लौटा दी, मुझे दर्शन देना अभी नहीं स्वीकार किया।
किंतु आज प्रिय मैंने अनायास ही तुम्हें पा लिया।
ओह, प्रसेनजीत का ही ये प्रसाद मुझे मिला, आज हार कर ही मैं भाग्यशाली बना प्रिय अम्बपाली।
सम्राट उठ खड़े हुए और दोनों हाथ पसार कर अम्बपाली की ओर बढ़े।
अम्बपाली खड़ी हो गई, उसका हास्य उड़ गया। उसने सूखे कंठ से कहा,
देव संयत हो, मैं देव से ही सुविचार की अभिलाषा रखती हूं।
मैं अंततः सुविचार करूंगा प्रिय।
तो देव, मेरा निवेदन है कि सम्राट की ये प्रणय आचना निष्फल है।
आह प्रिय, तुमने तो एक बारगी ही आशा को सुमदलित कर दिया।
सुनिए महाराज, आप सम्राट हैं और मैं वैश्य, हम दोनों ने ही प्रणय के अधिकार खो दिए हैं।
किंतु प्रिय, हम मानव तो हैं, मानव के अधिकार
वे भी हमने खो दिए।
तो जाने दो, कृमि कीट पतंग पशु जितने प्राणी हैं, क्या उनकी भांति भी हम प्रेम का आनंद नहीं ले सकते? दो निरीह पक्षियों की भांति भी नहीं?
नहीं देव, नहीं। जैसे वैश्य होना मेरे लिए अभिशाप है, वैसे ही सम्राट होना आपके लिए, प्रेम के राज्य में प्रवेश करना हम दोनों ही के लिए निषिद्ध है। हम लोग प्रेम का पुनीत प्रसाद पाने के अधिकारी ही नहीं रहे।
तब आओ प्रिय, हम इस अभिशाप को त्याग दें। मैं इस दूषित अभिशापित सम्राट पद को त्याग दूं और तुम
इस गर्हित वैश्य जीवन को?
सम्राट यही कहा चाहते हैं?
परंतु ये संभव नहीं है देव। जैसे मैं अपनी इच्छा से वैश्य नहीं बनी हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी इच्छा से सम्राट नहीं बने। हम समाज के बंधनों और कर्तव्यों के भार से दबे हैं, बचकर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है।
कोई मार्ग ही नहीं है?
ओह, बड़ी भयानक बात है ये प्रिय अम्बपाली।
सखी, तो फिर क्या कोई आशा नहीं?
सम्राट ने वेदनापूर्ण दृष्टि से अम्बपाली को देखा, वे धम से आसन पर बैठ गए।
अम्बपाली ने खोखले स्वर से नीची दृष्टि करके कहा,
आशा क्यों नहीं है सम्राट?
बहुत आशा है।
ओह तो प्रिय, फिर झटपट मेरे सौभाग्य का विस्तार करो।
वे फिर उठकर और दोनों हाथ फैलाकर अम्बपाली की ओर चले।
अम्बपाली ने पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर बैठकर कहा,
देव आप आसन पर विराजमान हो, मैं निवेदन करती हूं।
हमारी आशा यही है देव, कि मैं वैश्य हूं और आप सम्राट हैं।
ये कैसी बात प्रिय, यही तो हमारा परम दुर्भाग्य है।
और यही सौभाग्य भी है देव।
सौभाग्य कैसे?
दुर्भाग्य निवेदन कर चुकी कि हम प्रणय के अधिकारी नहीं हो सकते।
वो तो सुन चुका,
परंतु हम सौदा कर सकते हैं।
सौदा?
जी हां सम्राट, मैं वैश्या हूं, अपना शरीर बेच सकती हूं और आप सम्राट हैं, उसे मुंह मांगे दाम पर खरीद सकते हैं।
सम्राट ने उन्मत्त की भांति अपना खड्ग कोश से खींचकर उसे अम्बपाली के पैरों के पास पृथ्वी पर रखकर कहा,
ये मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं प्रिय।
अम्बपाली ने एक सूखी हंसी हंसी। उसने उठकर आदरपूर्वक खड्ग दोनों हाथों में उठा लिया, फिर उसे आंखों और मस्तक से लगाकर कहा,
सम्राट की जय हो, ये अधम लांछित नारी मगध साम्राज्य को लेकर क्या करेगी।
उसने ठंडी सांस लेकर खड्ग सम्राट की कमर में बांध दिया।
सम्राट ने कातरवाणी से कहा, अब और तो कुछ मेरे पास बचा नहीं प्रिय, ये अधम शरीर है, पर इसे क्या कहकर तुम्हारी भेंट करूं। यौवन और रूप सभी कुछ तो पुराना पड़ गया।
सम्राट का पुण्य शरीर दैवी वरदान है देव, इसी में संपूर्ण जम्बूद्वीप को एक करने की सामर्थ्य केंद्रित है।
तब देव, मेरी एक अभिलाषा है।
कहो प्रिय कहो।
आपके औरत से मेरे गर्भ में जो संतान हो वही मगध का भावी सम्राट हो।
सम्राट ने फिर खड्ग कोश से खींचकर ऊपर उठाया और उच्च स्वर से कहा, मैं शिशु नागवंशी मगधपति बिंबसार अपने साम्राज्य की शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि देवी अम्बपाली के गर्भ में मेरे औरत से जो पुत्र होगा वही मगध का भावी सम्राट होगा।
हुआ महाराज। अम्बपाली आंखों में आंसू भरकर उठी और एक सौरभमय पुष्पहार उसने सम्राट के गले में डाल दिया और झुककर सम्राट के चरण छुए।
सम्राट ने हर्षित होकर उसे उठाया और अपने कंठ से बहुमूल्य मुक्तामाल निकालकर उसके गले में डाल दी और कहा, प्रसेनजीत के लुटेरों से केवल यही बच पाई प्रिय।
सो वो यहां लुट गई।
अम्बपाली ने हंसकर स्निग्ध स्वर में कहा,
नाना खूब अच्छी तरह सुरक्षित ठौर पर पहुंच गई, अब लुटने पिटने का भय ही नहीं रहा।
ये कहकर उन्होंने अम्बपाली का हाथ पकड़ लिया। उसे आहिस्ता से छुड़ाकर अम्बपाली ने कहा, देव प्रसन्न हो, सम्राट की एक मर्यादा है और मगध के भावी सम्राट की माता की भी।
इतनी निष्ठुर न बनो प्रिय।
सुनिए देव, सम्राट को मगध के भावी सम्राट की माता के हृदय का एक कांटा दूर करना होगा, नहीं तो आपके पुत्र को लजाना पड़ेगा।
कहो अम्बपाली, अपना अभिप्राय कहो।
सम्राट ने आसन पर बैठकर जलद गंभीर स्वर में कहा,
दुहाई सम्राट की, लिच्छवी गणतंत्र ने मुझे बलपूर्वक अपने धिक्कृत कानून के अनुसार वैश्या बनाया है।
सम्राट का मुंह लाल हो गया।
अम्बपाली ने आंखों में आंसू भरकर कहा, देव मेरा अपराध केवल यही था कि मैं असाधारण सुंदरी थी, मेरा ये अभियोग है कि वैशाली गण को इसका दंड मिलना चाहिए।
सम्राट ने हाथ उठाकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अष्टकुल के लिच्छवी गणतंत्र का समूल नाश करूंगा
और सप्तभूमि प्रासाद के कलुषित वातावरण में।
अम्बपाली के होंठ कांप गए।
सम्राट ने कहा, नहीं नहीं प्रिय, देवी अम्बपाली को मैं राजगृह के राज महालय में ले जाकर पट्ट राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं।
अनुग्रहित हुई देव, आज मेरा स्त्री जन्म सार्थक हुआ, अब मुझे एक निवेदन करना है।
कहो प्रिय, अब मैं और तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं।
देव आपकी चिरकिंकरी अम्बपाली इस समय तक विशुद्ध कुमारी है और वो आपकी आमरण प्रतीक्षा करेगी।
मैं कृतार्थ हुआ प्रिय, आह्लादित हुआ।
सम्राट उठ खड़े हुए। अम्बपाली ने उनके चरण छुए।
सम्राट ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कक्ष से बाहर हो गए।
अम्बपाली आंखों में आंसू भरे वैसी ही खड़ी रह गई, उसके होंठ कांप रहे थे।
45 भविष्य कथन। भगवान वादरायण दीपाधार के निकट बैठे एक भूर्ज पत्र पर कुछ लिख रहे थे। माधव ने भूप्रणिपात करके देवी अम्बपाली के आगमन का संदेश दिया। दूसरे एक क्षण अम्बपाली ने साष्टांग दंडवत किया।
भगवान ने कहा, अब कहो शुभे अम्बपाली, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं।
अम्बपाली मौन रही। संकेत पाकर माधव चले गए। उनके जाने पर अम्बपाली ने कहा, भगवान इस समय क्या किसी गुरुतर कार्य में संलग्न है।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही गणना कर रहा था।
इस भाग्यहीन के भाग्य में अब और क्या है।
बहुत कुछ कल्याणी, तुम्हारा सौदा सफल है, तुम मगध के सम्राट की माता होगी। किंतु
अम्बपाली ने विस्मित होकर कहा,
भगवान सर्वदर्शी हैं पर किंतु क्या।
किंतु साम्राज्ञी नहीं।
अम्बपाली के होंठ कांपे पर वो बोली नहीं।
भगवान ने फिर कहा, और एक बात है शुभे।
वो क्या भगवान।
तुम वैशाली गणतंत्र की जन हो, वैशाली का अनिष्ट न करना।
अम्बपाली के भ्रू कुंचित हुए। ये देख भगवान वादरायण हंस दिए। उन्होंने कहा, गणतंत्र पर तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, उसे कानून के संबंध में ना।
भगवान उसे अधिकृत कानून के संबंध में,
पर यह बात तो अब पुरानी हुई। फिर तुमने उसका मुंह मांगा शुल्क भी पाया, अब भी तुम्हारा रोष नहीं गया।
नहीं भगवान नहीं।
फिर ये सौभाग्य,
मगध की साम्राज्ञी ना होते हुए मगध साम्राज्य की राजमाता का लांछित हास्यास्पद पद।
अम्बपाली ने घृणा से होंठ सिकोड़े और क्रोध से उसके नथने फूल गए।
भगवान वादरायण विचलित नहीं हुए, वे मंदस्मित करते अचल बैठे रहे। अम्बपाली एकटक उनकी भ्रुकुटी में चिंता प्रवाह देखती रही। भगवान ने मृदु मंद स्वर में कहा, केवल यही नहीं, क्या और भी कुछ?
बहुत कुछ।
वो क्या? भगवतपाद क्षणभर गहन चिंता में डूबे रहे, फिर जलद गंभीर वाणी से बोले,
शुभे अम्बपाली, तुम विश्व विश्रुत साध्वी प्रसिद्ध होगी।
भगवन, मैं अधम वैश्य?
शुभे, जिसके चरण तल की अपेक्षा मगध साम्राज्य का चक्र भी लघु है, उसे ये आत्म प्रतारणा शोभा नहीं देती।
फिर उन्होंने भाव गंभीर हो दोनों हाथ उठाकर कहा,
तुम्हारा कल्याण हो, परंतु तुम वैशाली की जनपद कल्याणी हो। एक बार तुमने आत्मदान करके वैशाली को गृह युद्ध से बचा लिया था, अब अपने तामसिक रोष में जनपद का अनिष्ट न करना। व्यक्ति से समष्टि की प्रतिष्ठा भी बड़ी है, स्वार्थ भी बड़ा है। व्यक्ति का स्वार्थ हे है, परंतु समष्टि का स्वार्थ उपादे।
भगवत्पाद ये कहकर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले,
त्याग संसार में महाश्रेष्ठ है, त्याग से अरिष्ट अनिष्ट सब टल जाते हैं। तुम जब देखो कि तुम्हारे द्वारा वैशाली का, उत्तराखंड के इस एकमात्र गणतंत्र का अनिष्ट हो रहा है, तब कोई महान त्याग करना, अनिष्ट टल जाएगा। मेरा ये वचन भूलना नहीं शुभे, नहीं तो वो महासौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।
मैं याद रखूंगी भगवन।
तुम्हारा कल्याण हो भद्रे, अब तुम अपने आवास को जाओ।
अम्बपाली बड़ी देर तक भगवान वादरायण व्यास के चरणों में चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रही, फिर आंखों में आंसू बहाती हुई उठकर चल दी।